लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे कलीसिया के उप याजकों के लिए प्रार्थना करते हैं, ताकि याजक वर्ग सुसमाचार और निर्धनों के प्रति सत्यनिष्ठ रहते हुए संपूर्ण कलीसिया के लिए एक स्फूर्तिदायक प्रतीक बने। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, कलीसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत हमने ख्रिस्तुस विवित अर्थात यीशु ख्रिस्त जीवित हैं युवाओं के संबंध में संपन्न हुई धर्म सभा 2018 के अतीत संत पापा फ्रांसिस द्वारा युवाओं और पूरी कलीसिया के नाम प्रेरितिक उद्बोधन पर एक चर्चा सुन रहे हैं। हम चौथे अध्याय में संत पापा फ्रांसिस द्वारा युवाओं के नाम एक वृहद संदेश का जिक्र कर रहे हैं, जो न केवल युवाओं के लिए वरन हम सबों के लिए एक बड़ी सच्चाई है, जो तीन मुख्य बातों में विभाजित है। हमने अपने पिछले दो प्रसारणों में प्रथम और द्वितीय सच्चाई के बारे में चर्चा की। प्रथम सच्चाई जो हमें कहती है कि ईश्वर हमें प्रेम करते हैं, इस तथ्य का जिक्र करते हुए संत पापा हमें अपने में यही विश्वास करने का आह्वान करते हैं कि चाहे हम युवा हों या बुजुर्ग, किसी भी जाति धर्म और संप्रदाय के क्यों ना हों, ईश्वर हम में से हर एक को हमेशा से प्रेम करते और हमेशा प्रेम करते रहेंगे, चाहे हम अपने में उनके प्रति कैसा भी व्यवहार क्यों ना करें। अपने को ईश्वर के द्वारा प्रेम किए जाने का एहसास करना हमारे लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें जीवन की कठिन परिस्थितियों और अपने दुख तकलीफ के क्षणों से बाहर निकलने में मदद करता है। ईश्वरीय प्रेम का एहसास हमारे लिए वह औषधि है जो हमारे जीवन की सभी बीमारियों और घावों से हमें चंगाई प्रदान करती है। इसके द्वारा हम अपने में आंतरिक शक्ति और बल पाते जो हमें जीवन का अर्थ समझने और जीवन को सही तरीके से जीने में प्रेरित करता है। वहीं दूसरी सच्चाई जो हमें कहती है कि यीशु हमें बचाते हैं, यह हमारे लिए प्रेम के गुण को प्रकट करता है। हम अपने प्रिय जनों को हर तरह की बुराई और जोखिम से बचाने का प्रयास करते हैं, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राणों की आहुति ही देनी क्यों ना पड़े। ईश्वर ने हमें अपने बेटे के द्वारा पाप और मृत्यु से बचाया है। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि आप अपने में कितने मूल्यवान हैं, क्योंकि आप यीशु मसीह के कीमती लोहू से बचाए गए हैं। युवाओं को संत पापा इस बात की याद दिलाना चाहते हैं कि उनका जीवन ईश्वर की नजरों में अति महत्वपूर्ण है। श्रोताओं, आज हम युवाओं के लिए संत पापा फ्रांसिस के तीसरी महत्वपूर्ण सच्चाई का जिक्र करेंगे, जो यीशु ख्रिस्त के जीवित होने की बात कहता है।
जी उठे प्रभु यीशु का प्रचार हम करेंगे, करते रहेंगे।
अंतिम में एक तीसरी सच्चाई जो दूसरी से अलग नहीं है, ख्रिस्त जीवित हैं। हमें अपने को इस बात से सदैव वाकिफ कराने की जरूरत है, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम यीशु को एक आदर्श के रूप में दूर से देखते हैं, एक यादगारी की भांति जहां वे 2000 साल पूर्व हमें बचाने हेतु आए। यह हमारे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि यह हमें अपने में परिवर्तनहीन छोड़ेगा, यह हमें अपने में स्वतंत्र नहीं करेगा। वे जो हमें अपनी कृपा से भर देते हैं, जो हमें मुक्ति दिलाते हैं, जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाते, हमें चंगाई दिलाते और हमें सांत्वना से भर देते हैं, वे हमारे लिए पूरी तरह जीवित हैं। वे जीवित यीशु ख्रिस्त हैं, जो मृतकों में से जी उठे हैं, जिनमें दिव्य जीवन और शक्ति है, जिनमें हम जीवन की असीमित ज्योति को पाते हैं। यही कारण है कि संत पौलुस हमें कहते हैं कि यदि यीशु ख्रीस्त मुर्दों में से जीव नहीं उठते तो आपका विश्वास अपने में व्यर्थ है। श्रोताओ, जीवित प्रभु जीवन में हर क्षण हर समय आपके साथ हो सकते हैं, जिससे वे आपको अपनी ज्योति से भर सकें और आपके जीवन के दुख और तकलीफ को दूर कर सकें। दूसरी सारी चीजें जो आपके जीवन से भले ही दूर चली जाएं, लेकिन वे जैसे हमें प्रतिज्ञा करते हैं, मैं सदैव तुम्हारे साथ, जीवन के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, वे हमारे जीवन को अपनी अदृश्य उपस्थिति से भर देते हैं। चाहे हम जहाँ कहीं भी जाएं, वे वहाँ हमारी प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि वे केवल अतीत में हमारे लिए नहीं आए, लेकिन वे हमारे लिए आज भी रोज दिन आते हैं। वे हमें निमंत्रण देते हैं कि हम अपने जीवन की नई क्षितिजों की ओर अग्रसर हों। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि हम यीशु को खुशी से भरा हुआ आनंद से सराबोर देखें, उनके साथ एक मित्र की भांति आनंद मनाएं जो हमारे लिए विजयी हुए हैं। उन्होंने उन्हें मार डाला, एक पवित्र व्यक्ति को, एक न्यायी निर्दोष को, लेकिन वे अंतिम में जीव उठे। बुराई का उनके ऊपर कोई वर्चस्व नहीं है, ना ही उस बुराई का हमारे जीवन में कोई प्रभाव रहेगा, क्योंकि वे हमारे एक अजीज मित्र हैं जो हमें प्रेम करते और हमें विजयी होते हुए देखने की चाह रखते हैं। संत पापा युवाओं से कहते हैं, प्रभु यीशु ख्रीस्त मुक्तिदाता जीवित हैं। वे युवाओं से कहते हैं कि क्योंकि यीशु ख्रीस्त हमारे लिए जीवन है, अतः इसमें कोई संदेह की बात नहीं कि हमारे जीवन की अच्छाई का बोलबाला होगा और हमारे जीवन की सारी मुसीबतें व्यर्थ सिद्ध होंगी। और यदि ऐसी बात है तो हम शिकायत करना छोड़कर भविष्य की ओर अपनी नजरें उठाएं, क्योंकि उनके साथ सारी चीजें संभव हैं। यह हमारे लिए जीवन की निश्चितता है। यीशु हमें अनंत जीवन देने हेतु जीवित हैं। यदि हम अपने को उनके साथ अति शीघ्रता के साथ संयुक्त करते तो हमें जीवन प्राप्त होता है और हम अपने जीवन में मृत्यु और हिंसा के दंश से अपने को सुरक्षित रखते हैं। जीवन की अन्य सारी चीजें अपने में क्षणिक और अपर्याप्त सिद्ध होंगी। वे हमारे लिए एक समय मददगार सिद्ध होंगी, लेकिन पुनः उनकी उपस्थिति में भी हम अपने को जीवन के तूफानों से घिरा हुआ महसूस करेंगे, जो हमें अपने में परित्यक्त होने की अनुभूति लाएगा। वहीं दूसरी ओर यीशु के साथ हमारा हृदय एक सुरक्षा की अनुभूति करता है, जो अपने में सुदृढ़ और सदैव बने रहते हैं। संत पौलुस फिलिपियों के नाम अपने पत्र में यीशु ख्रीस्त के संग एक होने की बात कहते हैं, जिससे वे उन्हें और उनके पुनरुत्थान की शक्ति का एहसास कर सकें। उनकी शक्ति आपके जीवन में भी लगातार प्रकट होगी, क्योंकि वे हमें जीवन देने और भरपूर जीवन देने आते हैं। यदि आप अपने हृदय में उनके इस संदेश की प्रशंसा करना सीखें, यदि आप उनसे मुलाकात करने की चाह रखें, यदि आप उन्हें अपने को बचाने और प्रेम करने दें, यदि आप उनसे मित्रता करते हुए उनके साथ वार्ता करना शुरू करें, उन्हें अपने जीवन की हकीकतों को बतलाएं, तो आप उनके द्वारा और उनमें एक गहरी अनुभूति करेंगे जो आपके पूरे ख्रिस्तीय जीवन को अर्थपूर्ण बनाएगा, क्योंकि ख्रिस्तीय होने का अर्थ अपने में एक नैतिक विकल्प या एक अति विशिष्ट विचार को वहन करना मात्र नहीं है, बल्कि यह अपने में उस घटना, उस व्यक्ति से अपने को सम्मिलित करना है जो हमारे जीवन की एक नए क्षितिज को खोलती और हमें एक विशेष दिशा प्रदान करती है। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा के विश्व प्रेरितिक पत्र ख्रिस्तुस विविध पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इसके बारे में अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
जीवन की राह में प्रभु साथ चलते जाना, सुख हो या गम का चलना, जीवन की राह में प्रभु साथ चलते जाना, सुख हो या गम का साया हाथ पकड़ के चलना,
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। वैटिकन स्थित प्रेरितिक आवास संत मार्था के प्रार्थनालय में मंगलवार को ख्रिस्त त्याग अर्पित करते हुए संत पापा फ्रांसिस ने उन सभी लोगों की याद की जो कोविड-19 के कारण मौत के शिकार हो गए। उपदेश में उन्होंने उन मनोभावों पर प्रकाश डाला जो हमें यीशु की भेड़ होने से रोकता है। 5 मई को ख्रिस्त त्याग अर्पित करते हुए संत पापा ने कोरोना वायरस महामारी के शिकार लोगों के लिए प्रार्थना की। उन्होंने कहा, आज हम उन मृतकों के लिए प्रार्थना करते हैं जो महामारी के कारण मृत्यु के शिकार हो गए। उनमें से कई की दफन क्रिया भी नहीं संपन्न हो पाई। प्रभु उन्हें अपने महिमा में प्रवेश पाने दे। अपने उपदेश में संत पापा ने आज के सुसमाचार पाठ पर चिंतन किया जिसमें यहूदी यीशु से स्पष्ट शब्दों में जानना चाहते हैं कि क्या वे मसीह हैं। यीशु उन्हें उत्तर देते हैं कि उन्होंने उन्हें बता दिया है, फिर भी वे विश्वास नहीं करते। संत पापा ने कहा कि यह पाठ हमें अपने विश्वास पर चिंतन करने हेतु प्रेरित करता है। क्या मैं विश्वास करता हूँ? द्वार जो स्वयं यीशु हैं, उनसे होकर प्रवेश करने में मेरे लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं? संत पापा ने कई पूर्वग्राही मनोभाव बतलाए जो हमें यीशु का ज्ञान प्राप्त करने से रोकते हैं। संत पापा ने कहा कि मुख्य बाधा है धन। हम में से कई ने प्रभु के द्वार में प्रवेश किया किंतु उसमें आगे नहीं बढ़ पाए क्योंकि हम धन के गुलाम हैं। उन्होंने धन को एक बड़ी बाधा कहा जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तब क्या हमें गरीब हो जाना चाहिए? संत पापा ने कहा कि हमें गरीब होना नहीं है बल्कि धन का गुलाम नहीं बनना है जो इस दुनिया का स्वामी है, और हम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। संत पापा ने कहा कि हृदय की कठोरता विश्वास के लिए दूसरी बाधा है। यीशु संहिता के पंडितों को नियमों की व्याख्या करने में उनकी कठोरता के लिए फटकारते थे जो सच्ची निष्ठा नहीं है। निष्ठा ईश्वर का वरदान है जबकि कठोरता अपने आप की सुरक्षा मात्र। संत पापा ने कहा कि इस तरह की कठोरता हमें प्रभु की प्रज्ञा एवं सुंदरता से दूर कर देती है और हमारी आजादी छीन लेती है। उन्होंने कहा कि उदासीनता, याजकवाद और दुनियावी भावना ये 3 मनोभाव हैं जो हमें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने से रोक देते हैं। उदासीनता एक प्रकार की थकान है जो प्रभु की ओर बढ़ने की चाह को छीन लेती है और हमें गुनगुना बना देती है। याजकवाद यीशु का स्थान लेना चाहता है। प्रभु को मार्गदर्शन करने देने के बदले याजकवाद विश्वास के द्वार पर प्रवेश करने पर रोक लगा देता है। संत पापा ने कहा कि यह एक गंभीर बीमारी है जो हमारे विश्वास की स्वतंत्रता को छीन लेती और यीशु की ओर बढ़ने से रोक देती है। संत पापा ने कहा कि ये सभी चीजें हमें यीशु के झुंड के सदस्य होने से रोक देती हैं। हम धन, उदासीनता, कठोरता, दुनियादारी, याजकवाद और विचारधारा की भेड़े बनकर रह जाते हैं। इनमें स्वतंत्रता की कमी है और स्वतंत्रता के बिना हम यीशु का अनुसरण नहीं कर सकते। अपने उपदेश के अंत में संत पापा ने सभी विश्वासियों को निमंत्रण दिया कि हम अपने आप पर गौर करें कि क्या हम इन प्रलोभनों से मुक्त हैं, जिससे कि हम प्रभु के ज्ञान में बढ़ सकें। उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु हमें आलोकित करे ताकि हम अपने आप को देख पाएं। समग्र मानव विकास हेतु गठित परमधम पीठे परिषद के शरणार्थी एवं आप्रवासी विभाग ने आंतरिक विस्थापन की चुनौतियों का सामना करने के लिए एक नया दिशा निर्देश प्रस्तुत किया है। मंगलवार को वैटिकन ने आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों की स्थिति पर कलीसिया की प्रतिक्रिया के लिए एक दिशा निर्देश प्रस्तुत किया। पुस्तिका का शीर्षक है आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों पर प्रेरित दिशा निर्देश। एशियाई कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलनों के संघ ने अपने सदस्यों को जानकारी दी है कि आगामी नवंबर माह में होने वाली महासभा को स्थगित कर दिया गया है। एशियाई कार्तिक धर्मदक्ष सम्मेलनों के संघ ने अपने सदस्यों को सूचना दी है कि स्थिति स्थिर नहीं होने के कारण सम्मेलन को स्थगित कर दिया गया है, जिसका आयोजन 3 से 20 नवंबर को थाईलैंड के बान फू वान में किया गया था। भविष्य में महासभा के आयोजन की कोई तिथि बतलाई नहीं गई है। सदस्यों को प्रेषित पत्र में कहा गया है कि FFBC के केंद्र समिति एवं कार्यालय की सभा जून में होने वाली थी, किंतु उसे भी स्थगित कर दिया गया है। पत्र पर FFBC के अध्यक्ष म्यांमार के कार्डिनल चार्ल्स पो और सभा के संयोजक मुंबई के महाधर्माध्यक्ष कार्डिनल ओस्वाल्ड ग्रेसियस का हस्ताक्षर है। सम्मेलन के अधिकांश सदस्य देश अब भी लॉकडाउन में हैं, किंतु 2 अप्रैल को प्रसिद्ध पत्र में कहा गया है कि वे आधुनिक दुनिया के इतिहास में इस अंधकारमय समय से गुजरते हुए भी संबंध के गहरे महत्व को महसूस करते हैं। FFBC के संचालकों ने गौर किया है कि इस समय में हम ईश्वर पर अधिक आश्रित और विश्वास में मजबूती का अनुभव करते हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि संकट से अधिक गहरी धार्मिक भावना के साथ सभी बाहर आएंगे। उधर संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने 1 मई को महामारी के दौरान और बाद में बुजुर्गों के सामने आने वाली चुनौतियों को संबोधित करते हुए एक नई नीतिगत पहल शुरू की है। विश्व भर में बुजुर्गों के लिए COVID-19 महामारी द्वारा आघटित भय और पीड़ा पर गौर करते हुए संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुटेरेस ने अपील की है कि वायरस के लिए मानवता की प्रतिक्रिया में बुजुर्गों के अधिकारों एवं प्रतिष्ठा के प्रति सम्मान को भी शामिल किया जाए। UN की नीति को जारी करने के लिए प्रकाशित एक वीडियो संदेश में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने कहा है, वृद्ध लोगों का मृत्यु दर कुल मिलाकर अधिक है और जो लोग 80 से अधिक उम्र वाले हैं, यह वैश्विक औसत से 5 गुना अधिक है। संयुक्त राष्ट्र के विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल माह के पहले सप्ताह में गौर किया गया है कि विश्व के 30 प्रमुख देशों में COVID-19 से मरने वालों में बुजुर्गों की संख्या 95% है, जो 60 साल की उम्र से अधिक थे। मरने वालों में 50% लोग 80 साल के अथवा उससे भी अधिक साल के थे। उधर COVID-19 के तहत सेंट मैरी सामटोले के यीशु समाजी पुरोहितों ने कलीसिया की ओर से सिमडेगा जिला उपायुक्त के द्वारा एक रिस्पांस टीम का गठन किया है। इस अभियान के द्वारा सीमावर्ती इलाकों में महामारी से बचने के लिए लोगों के बीच जागृति लाई जा रही है तथा उनके बीच मास्क और साबुन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।